ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായ 10, ശ്ലോക സംഖ്യ 4 and 5, പാർട്ട് 7. ഇസ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാൻ മേ പ്രവേശ് കർണെ സെ പെഹ്ലെ ഗുരു ഓർ ഗൗരംഗ സെ കൃപ കി യാച്ന കർത്തെ ഹുവേ മംഗല ആചരണ കരേംഗെ താകി ഹം ജോ അധ്യയൻ കർ രഹേ ഹൈ ഉസ്കാ പൂരാ പൂരാ ലാഭ പ്രാപ്ത ഹോ സകേ ജോ കി ഹൈ കൃഷ്ണ പ്രേം കി പ്രാപ്തി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാതിമിരന്ധസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കദാമഹയം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥം വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാൻവിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരീ വൃഷഭാനോ സൂതദേവീ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വംശാകൽപ്പതരുഭ്യസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധാര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो. अध्याय 10, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग. श्लोक संख्या 4 and 5. कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम् दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम् मत्त एव पृथक् विधाः. अनुवाद, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश. जीवों के ये विविध गुण
मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जीवों की 20 क्वालिटीज को डिस्कस किया है, जिसमें से हम 13 क्वालिटीज पढ़ चुके हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दमा, क्षमा, सुख, दुख, भवो, भावो, भयम, चाभयम, यहाँ तक हम पढ़ चुके। आज हम नेक्स्ट 3 क्वालिटीज अहिंसा, समता और तुष्टि के ऊपर चर्चा करेंगे। कृपया जहां से श्रील प्रभुपाद जी का 3rd पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, 2nd पेज पर लास्ट पैराग्राफ, वहां से अहिंसा के विषय में श्रील प्रभुपाद जी परपट में कह रहे हैं, तो कृपया मेरे साथ साथ देखिए। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से अहिंसा को समझाएंगे। वास्तव में भक्तों, ये जो श्रील प्रभुपाद जी के पर्पस है ना, वो कोई साधारण जो तात्पर्य होता है ना, ऐसे नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि ये जो मेरे पर्पस है ना, वो मैंने अपनी बुद्धि से नहीं लिखे हैं, कृष्ण स्वयं डिक्टेट मी, कृष्ण ने स्वयं मुझे लिखाए हैं, मुझे डिक्टेट किया है और मैं तो खाली लिखता आया हूँ। श्रील प्रभुपाद पर्पस इट्स लाइक अ ब्राइट सनशाइन, जैसे सूर्य, जो सूर्य कैसे चमकता है और हर एक चीज जो है वो एकदम क्लियर दिख रही होती है, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद दिस जो श्रील प्रभुपाद जी के पर्पस है ना, वो एकदम अलग से ही वास्तविकता दिखाते हैं। दीज पर्पस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स, एकदम अलग से हमें समझाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड नाउ श्री प्रभुपाद गिव्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा माना नॉन वायलेंस, और उसको श्री प्रभुपाद जी इतना सुंदर से बताएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि हम थोड़ी देर के लिए तो ये सोचने लगेंगे, अच्छा हिस्सा ऐसी होती है अहिंसा। श्रील प्रभुपाद जी का पर्पट पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए गौर से सुनिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। आगे जो भौतिक कार्य अनेक अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती है। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह का के प्रति हिंसा करने वाला होता है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। अनकोट यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से अहिंसा के विषय में बताया। जनरली वी आर थिंक अहिंसा मीन्स अवॉइडिंग फिजिकली वायलेंस, है ना, कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को मारना नहीं है, नॉट किलिंग, और ये नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, वो अहिंसा को पॉजिटिवली और बहुत ही हाईएस्ट, जो ग्रेटेस्ट अहिंसा है उसके विषय में बता रहे हैं। वैसे तो हम इसको नेगेटिव लेते ना कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अहिंसा का मतलब है किसी को दुख नहीं दो, किसी को तकलीफ नहीं दो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे पॉजिटिव लो उसको, कैसे नहीं निकालो, यस क्या और यस में क्या। आखिरी लाइन देखिए, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, उनको कुछ ऐसा दो कि उनके जो भावी यानी फ्यूचर के जो आध्यात्मिक सुख उनको प्राप्त होने वाला है उसमें वृद्धि हो। कुछ ऐसा उनके लिए करो जिससे कि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। और फ्यूचर भी ये भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सुधर जाए। हमारा जो आज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया कि संसार में जो भौतिक कार्य अनेक अनेक राजनीतिक करते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं या परोपकारी लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से सबके साथ अहिंसा करते हैं, मतलब बहुत उनके लिए कार्य करते हैं, किसी को क्या कोई हेल्प कर देते हैं, किसी को मेडिसिन दे देते हैं, किसी को कपड़े दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं और सोचते हैं कि हम उनका भला कर रहे हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती है। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। वो कोई एक टाइम किसी को खाना खिला देंगे या फिर क्या होगा, किसी को कपड़े दे देंगे, किसी को दवाइयां दे देंगे, किसी का विवाह कर देंगे, तो ये वास्तव में मानव जीवन का कल्याण है? क्योंकि वो वास्तविक कल्याण को नहीं समझते हैं, इसीलिए वो इसी को समझते हैं कि हम परोपकार का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर अहिंसा के विषय में बताते हैं कि अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। ये हाईएस्ट अहिंसा है कि जीवों को इस तरह से प्रीच किया जाए कि आपको अगर इस भौतिक जगत में कोई कष्ट है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने पिछले जन्म में ऐसे कार्य किए थे जिनके कारण आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। आज आप एक ऐसा कार्य करो जिससे वो सारे पापों के परिणाम नष्ट हो जाए। आज आप कृष्ण का पवित्र नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम यदि एक बार कोई ले लेता है, नाम नो ही यावती शक्ति पाप नर हरणे हरी तावत कर तुम न शक्तोपी पातकम पात की न रह। भगवान का पवित्र नाम यदि कोई एक बार ले लेता है, वो एक बार जपा हुआ नाम जीवों के इतने अपराधों को क्षमा कर सकता है जितने अपराध वो कर ही नहीं सकता। आज जीव दुखी क्यों है, आज जीव को कष्ट क्यों मिल रहा है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसने अपराध किए हैं। तो उनके उस प्रेजेंट जो दुख की अवस्था है उसको यदि हम थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं, फिर भी उनके अपराध तो खत्म ना हुए ना, उनके नसीब का दुख, उनके भाग्य का दुख किधर जाएगा? क्या हमारे खाना दे देने से, कपड़े दे देने से और औषधि दे देने से वो दुख समाप्त हो जाएगा? नहीं, आज थोड़ी देर के लिए वो स्वस्थ हो जाएंगे और पुनः वो दुख वापिस उसके पास आ जाएंगे। इसलिए वास्तविक अहिंसा क्या है, श्रील रूपा जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। क्योंकि केवल मनुष्य देह में ही संभव है कि हम अपने समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सके। अब आप सोचिए, क्या किसी कुत्ते को या किसी गधे को भगवान की भक्ति करने का चांस मिल सकता है? वो यदि यहाँ पर आ भी जाए और सीखे कि मुझे भी भागवत क्लास सुननी है, मुझे भगवत गीता सुननी है, तो क्या उसे मंदिर में आकर बैठने दिया जाएगा? क्या उसकी बात कोई समझेगा? नहीं भक्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना कृष्ण भक्ति की, ये जो भगवान के पवित्र नाम जप करने की का जो सौभाग्य है ना, वो केवल मनुष्यों के लिए है। मनुष्याणाम सहस्रेशु, भगवान ने नाम लिख दिया कि मनुष्य ही ऐसा कर सकते हैं, कश्चित माम वेति तत्वतः, जो मुझसे मुझे जान सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। आजकल सब और अहिंसा भरी हुई है, जीवों के कल्याण के विषय में कोई नहीं बताता, केवल यही बताया जाता है कैसे अधिक से अधिक धन कमाओ, कैसे अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं प्राप्त करो, कैसे अधिक से अधिक भौतिक एजुकेशन हासिल करो, कैसे अधिक से अधिक अपने इस भौतिक देह को संतुष्ट और सुविधा स्वस्थ रखो। यही केवल बताया जाता है कि कैसे आप अच्छे दिखो, कैसे आप अच्छा खाओ, कैसे आप अच्छा पहनो, कैसे आपको अच्छे कमेंट्स मिले। कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे आप अपने मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ो। वास्तव में अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि मानव देह का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। और मानव देह का लाभ क्या है? मनुष्य देह का लाभ है भजमन कृष्ण मुरार, केवल भगवान की भक्ति। केवल भगवान की भक्ति करने से ही जीवों का वास्तविक कल्याण हो सकता है। उसकी उनको अगर भगवत भक्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो वही वास्तविक अहिंसा है। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि मानव देह आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है, तथा सो अथासो ब्रह्म जिज्ञासा। आप मनुष्य बने हो तो नायम देहो देह बाजा मृलोक के कष्टान कामान अहर्ते विट्ट हो जान। ऋषभ देव अपने 9 पुत्रों को कहते हैं कि जो नृलोक है, ये मनुष्य देह मिली है, वो पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए या केवल भौतिक दुखों को दूर करने के लिए या भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं मिली है। ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम, ये तो दिव्य तपस्या करने के लिए मिली है जिससे मानव जीवन का वास्तविक कल्याण हो सके। आत्म साक्षात्कार करने के लिए यह देह मिली है। अतः श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अहिंसा कैसे बता रहे हैं कि अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा वाला, हिंसा करने वाला है। यानी कि अगर कुछ ऐसे संघ हैं, ऐसे वो हैं, जैसे संस्थाएं हैं जो कि वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रोत्साहन नहीं करते हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार को ध्यान में ना रखते हुए केवल भौतिक चीजों के बारे में ही आपको बताया जा रहा है, हर वो संस्था और हर वो संघ जहाँ पर आत्म साक्षात्कार के अलावा कुछ भी बताया जा रहा है, जिसके कारण आज का मनुष्य आत्म साक्षात्कार को भूलकर देहात्म बुद्धि की ओर आकर्षित होता है, वो जीव के साथ सबसे बड़ी हिंसा है। इसका मतलब आज जीव के साथ प्रतिक्षण हर एक जगह, हर एक तरफ, हर एक मोड़ पे अहिंसा हो रही है, क्योंकि कहाँ बताया जा रहा है आत्म साक्षात्कार, कहाँ जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया जा रहा है? कहीं नहीं। केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये जो हमारी इस्कॉन संस्था है, जो कृष्ण भक्ति वाली जो संस्था है, केवल वहीं पर आपको बताया जाता है कि वास्तव में आत्मा का कल्याण किससे होगा। वरना तो जीव खाली हर जगह पर उसको चीट किया जाता है, ऐसे करो तो सुखी हो जाओगे, ऐसे करोगे तो सुखी हो जाओगे, ये वास्तव में हिंसा है। इसे श्री प्रभुपाद ने कहा, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति के में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला हो। यदि आज एक माँ अपने बच्चे को ये सिखाती कि बेटा आपके जीवन का लक्ष्य है बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करना, और उसके बाद एजुकेशन के बल पर
बहुत ज्यादा धन प्राप्त करना, तो ये माता सबसे बड़ी हिंसक है अपने बच्चे की। माँ को अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा इस भौतिक जगत में ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वो तो हमें अपने कर्मों से मिलेंगी, लेकिन वास्तविक जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति है, उसके विषय में आपको अवश्य समय निकालना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करनी है। वास्तविक हिंसा, वास्तविक अहिंसा यही है कि हम जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ाएं, सबको प्रोत्साहित करें, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि जिससे मनुष्य की भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वही अहिंसा है। भले अभी बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, नाम जप करने में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है समाज में कोई भी तो नहीं करता, मम्मी आप मुझे कहते हो करो, कोई भी तो कीर्तन नहीं करता, तिलक नहीं लगाता, कंठी नहीं पहनता, मेरा मजाक उड़ाते हैं सब। लेकिन वास्तविक कल्याण है इससे, जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होने वाला है। तो भले ही अभी उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यही वास्तविक अहिंसा है जिससे भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो रही है। ये जो भगवान का नाम यदि हम अपने बच्चों से या समाज में किसी से भी, वास्तव में भक्तों द ग्रेटेस्ट एंड हाइएस्ट अहिंसा इज टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति के विषय में सबको बताना कि आप आत्मा हो या भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, आपका संबंध कृष्ण के साथ है, कृष्ण को प्रसन्न करने से आप प्रसन्न हो जाओगे। तो जब कोई कृष्ण भक्त हो जाता है ना, तो उससे बाकी जितने भी सारे गुण हैं वो खुद ब खुद उसके अंदर आ जाते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलता है, यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो उसका हृदय विमल होता है। उसके हृदय, वास्तव में जीव अपराध क्यों करता है, क्योंकि हृदय अपवित्र है, लेकिन जैसे जैसे जब भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि वो पवित्र हृदय वाला भक्त कभी भी अपराध नहीं करता। वो अपराध करने के विषय में सोचता नहीं है, क्योंकि वो कार्य किस लिए करता है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर वो अपराध क्यों करेगा, इंद्र तृप्ति की तो लेश मात्र भी उसके हृदय में इच्छा नहीं होती है। वास्तव में किसी को दुख दिया जाता है जब हम इच्छा रखते हैं मान सम्मान की, वास्तव में जब हम इच्छा रखते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, तब हम किसी को दुख देते हैं या किसी की हिंसा करते हैं। लेकिन जब हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है सिवाय कृष्ण को प्रसन्न करने के, तो वो भक्त भला किसी की क्या अहिंसा करेगा, किसी की क्या हिंसा करेगा। तो शास्त्र कहता है जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके अंदर देवताओं के से भी गुण प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, मृगहारी का लीजिए, मृगहारी जब पशुओं को मारता था तो तड़पता हुआ देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होता था, उसे अच्छा लगता था। वे बोलते थे अधमरो जीव जब थड़ फड़ कर, जब आधा मरा हुआ जीव इस तरह से तड़पता है तो मुझे बहुत आनंद आता है। नारद मुनि की एक उपदेश से, नारद मुनि ने उसे ये नहीं कहा कि आपको इनको नहीं मारना चाहिए, ये नहीं करना, इतना उपदेश नहीं बोला, बस आप भगवान के पवित्र नाम का जप करो। और वो जप भी कैसे किया, मरा 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 मरा, और उल्टा नाम जपते से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो जब हम भगवान के पवित्र नाम को सीधा सीधा जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। और जब वो चलते थे ना, तो जब जमीन पे जो इंसेक्ट्स होते ना, कीड़े, उनको भी, उनसे भी बचा बचा के चलते थे कि कहीं मेरे पीर से उनको न कष्ट हो जाए। तो जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो किसी और की हिंसा के विषय में तो सोच भी नहीं सकते। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया कि अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। हमें किसी को भी कष्ट, शरीर का तो बहुत दूर की बात है, जो भक्त होता है उसे तो वाणी की भी तपस्या करनी पड़ती होता है कि वो वाणी से भी किसी को ऐसे शब्द ना कहे जिससे उसे दुख पहुंचे। सबके साथ ऐसे बोलना चाहिए कि भले ही हम, जैसे हम कल बात कर रहे थे सत्य के विषय में, कि हम भले सत्य भी बोलें फिर भी इस तरह से बोलें कि सामने वाले को कट्टू ना लगे। भले कड़वा है लेकिन फिर भी अपने शब्दों को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे अच्छे तरीके से किसी को भी। हमें भक्तों को सदैव एक बात स्मरण करनी चाहिए कि जिस भगवान से मैं प्रेम करता हूँ वो संपूर्ण जीवों के हृदय में रहते हैं, तो अगर मैं उसको दुख पहुंचाऊंगा तो उसके हृदय में बैठे हुए भगवान को भी तो दुख पहुंचेगा। तो भक्त कभी किसी के विषय में ऐसी बात करता नहीं है, किसी को कोई ऐसी बात बोलता ही नहीं है जिससे कि उसे दुख पहुंचे। भक्त को केवल यही इच्छा होती है कि सब लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करें, इसीलिए वो अगर कुछ ऐसा भी करते हैं। हमारे सारे आचार्यों को देखो, जिन जिसने जिस जिसको तकलीफ दी दुख दिया वही उनके कल्याण के विषय में सोचते हैं। तो फिर जैसे हरिदास ठाकुर महाराज हैं या जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज है, सबने अपने, यहाँ तक के श्री राम जब इस भौतिक जगत में आए तो जब वो 14 साल का केकई के षड्यंत्र के कारण वो 14 साल के लिए वनवास में गए और जब वापस आए तो बोले सबसे पहले मैं अपनी माता केकई के चरण स्पर्श करूंगा। कभी भी भक्त जो है वो किसी को भी कष्ट देने वाले शब्द नहीं बोलता, सबके साथ प्रेम से बात करता है और यही वाणी की तपस्या भी है। और वास्तव में अहिंसा क्या है कि जीवों को कृष्ण के विषय में बताया जाए, आत्मा साक्षात्कार के विषय में प्रगति करने में उनको सहायता दी जाए और उन्हें यह याद दिलाया जाए कि आप तो आत्मा हो और आत्मा का संबंध कृष्ण से है। ये भौतिक जगत में कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ हमें अटैचमेंट रखनी चाहिए। हृदय का आकर्षण, हृदय का प्रेम केवल कृष्ण के साथ होना चाहिए और भौतिक जगत में अपने संपूर्ण कार्यों को कृष्ण के द्वारा दी गई ड्यूटी समझकर निभाना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं समता के विषय में। समता का मतलब होता है इक्वेलिटी, एक समान। कृपया मेरे साथ साथ प्रपट देखिए, दूसरे पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करें, यही समता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। कितना सुंदर रीति से और कितना सिंपल तरीके से समता के स्टैंडर्ड को श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। क्या कहा? अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जिता। यही समता है कि ये जो भौतिक जगत में जो चीजें होती हैं, राग, इससे ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, इससे ज्यादा द्वेष हो जाए, राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, हार जीत सुख दुख सबको समान, हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर लेकर आते हैं और जब तक हम भौतिक स्तर पर होंगे, जब तक हम देहात्म बुद्धि में होंगे, तब तक हम कभी भी समता नहीं रख सकते। तब तक राग द्वेष ये सब चलता रहेगा, हार होने पर दुखी और जीत होने पर आनंद का अनुभव करेंगे। जब कोई हमारे इस भौतिक शरीर से रिलेटेड किसी भलाई के कार्य को करेगा तो उसके प्रति राग होगा, और यदि कोई हमारे साथ द्वेष करेगा तो उसके प्रति द्वेष होगा। जब तक हम भौतिक प्लेटफॉर्म पे होंगे समता पर कभी नहीं आ सकते, लेकिन जब हम अपने आप को कृष्ण का सेवक समझेंगे, जब हम अपने आप को आत्मा समझकर भगवान की भक्ति को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य समझेंगे, तभी इस बात को समझ सकते। तभी मैं आपको बता रही थी कि श्री प्रभुपाद जी के जो प्रॉपर्स हैं वो हाईएस्ट फिलोसफी दे रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल है बस वही चीजों के अंदर हमारी अट्रैक्शन होनी चाहिए, वही जो भगवान कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में अनुकूल हो उसी को ग्रहण करना चाहिए, उसी के ऊपर हमें और जो भक्ति में प्रतिकूल हो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यही समता है। समता क्या है? जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उसका परित्याग करना। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति ना तो कुछ ग्रहण करना उसको ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है, क्योंकि उसे पता है जो कुछ भी है वो कृष्ण की सेवा में लगाना है मुझे। मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी है वो कृष्ण की सेवा में ही मुझे यूज करना है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन होता है कि ये जो वस्तु है मुझे इससे कोई द्वेष भी नहीं है, कोई राग भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस वस्तु को इस व्यक्ति को मैं कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रयोजित कर सकूं, कैसे उसका प्रयोजन मैं भगवान की सेवा में कर सकूं। फिर वो भले कोई भौतिक कार्य भी कर रहा है किसी से भी राग और द्वेष नहीं होता उसे। हमारे लिए श्री प्रभुपाद जी ने समता का एक सिंपल स्टैंडर्ड लिया है कि जो कुछ कृष्ण भक्ति में अनुकूल है उसको ही ग्रहण करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसका परित्याग करना चाहिए। जैसे भौतिक जगत में अगर देखा जाए तो समता का क्या मतलब है कि राग द्वेष भय उसमें अभय और है ना जीत हार सब इक्वल हम रखना है ना, ये है वास्तव में समता। लेकिन यहाँ पर जैसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो एकदम हाईएस्ट प्लेटफॉर्म के वस्तुओं के विषय में बता रहे हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है, ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना ही अत्यधिक द्वेष अच्छा होता है, कि हमें ना तो किसी से ज्यादा अट्रैक्शन होनी चाहिए भौतिक जगत में और ना ही ज्यादा डिटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं इस वस्तु को भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये भौतिक है मेरा पतन कर देगी, इसको भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं मुझे है ना भौतिक वस्तुओं की और नहीं लेकर नहीं देखना चाहिए वरना मेरी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। तो फिर क्या होगा, हम कोई भी चीज को सही तरह से ना उससे अटैचमेंट खत्म कर सकेंगे और ना ही डिटैचमेंट खत्म कर सकेंगे। करना क्या होगा कि जो भी वस्तुएं हैं इसको हमें भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए, कि सारी वस्तुएं मैं इसीलिए ग्रहण कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनको भगवान की सेवा में यूज करना, यही वास्तव में सुंदरता है एक कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन की। जो कृष्ण भक्त होता है वो हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में स्वीकार करता है और उसकी सेवा के लिए ही यूज करता है, यही वास्तविक समता है। और वो किसी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करता जो उसे भक्ति में प्रतिकूल हो, जैसे शराब पीना, जैसे परस्त्री संग करना, जैसे जुआ खेलना, मांसाहार करना। सबको पता है कि ये वस्तुएं हम कृष्ण सेवा के लिए यूज नहीं कर सकते, तो फिर ये सारी प्रतिकूल स्थितियां जो हैं उनकी ओर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता उसको, केवल जो अनुकूल स्थिति जो भी वस्तु है उसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं उसी के विषय में वो सोचता है, इसी को समता कहा जाता है। आगे है तुष्टि ही, ये बहुत ही सुंदर है एकदम सुपर और इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी के पापट में पढ़िए, तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना रहें। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इन दो लाइनों में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन का सिद्धांत दे दिया। यदि ये करना आ जाए ना मनुष्य को, फिर कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी को कोई उद्विग्न ना होगा, कष्ट ना होगा। क्या करना आ जाए? संतुष्ट रहना आ जाए। दिस वेरी हार्ड वन, है ना। ये बहुत ज्यादा कठिन है जीव के लिए, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना हो। आजकल का सारा जितने भी मनुष्य हैं, वो यही सोचते हैं कि हम अधिक से अधिक गधों की तरह मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक वस्तुएं अपनी सुविधाओं की प्राप्ति करके आनंद से जिएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा करने से आपको कभी भी आनंद नहीं आएगा। वास्तविकता तो ये है कि जिन वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन हो उनके लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कम मेहनत से हमें प्राप्त हो जाती हैं उन पर संतुष्ट रहना चाहिए। यदि जीव संतुष्ट नहीं है तो कभी आनंदित नहीं हो सकता। श्रील रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बताते हैं, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लोल्यं च षट्भिः भक्ति विनश्यति। आपकी भक्ति का सर्वनाश करने वाली छह चीजें होती हैं और उसमें सबसे पहले नाम आता है अत्याहार। अत्याहार का मतलब खाली ज्यादा भोजन नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत कठिन प्रयास करना, ये अत्याहार में आता है और आपकी भक्ति का सर्वनाश कर देता है। भागवत में तो यहाँ तक कह दिया, तल लभ्यते दुख वदत यतः सुखम, कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो आपके भाग्य की हैं, वो तो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। जिस प्रकार से दुख बगैर किसी परिश्रम के आपको पहुंचा दिया जाता है, उसी तरह से आपके हिस्से का धन, आपके हिस्से का सुख भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। तो आप कहोगे तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, खुद ही घर पे आके खाना मिलेगा? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रयास ना करें, कुछ भी कार्य ना करें। भगवान ने कहीं भगवत गीता में ये नहीं कहा कि आप कर्म करना छोड़ दो, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भौतिक वस्तुओं को ज्यादा इकट्ठा करने की हृदय के अंदर जो लालच है ना, वो नहीं होनी चाहिए। बस लिमिटेड कार्य करो, अपने जीवन के शेड्यूल को, अपने दिन के शेड्यूल को ऐसे बनाओ कि आपको पर्याप्त मात्रा में जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए भी समय मिले। आजकल हम देखते हैं जो पुरुष लोग होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय केवल धन अर्जित करने में ही लगाना होता है। समय पूरा सुबह से, मतलब सुबह को तो उठते नहीं है क्योंकि रात को 2-3 बजे तक जाग रहे होते हैं। अब जो सुबह का प्रभात का समय है, जो भगवान के लिए स्पेशल बनाया गया है, वो तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं होता है। उठते हैं 12 बजे 1 बजे, जल्दी जल्दी खाना खाके टिफिन हाथ में उठा के चले जाते हैं अपने बिजनेस की ओर, और जब रात को थके हारे आते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए फ्रेश होके खाना वाना खाके टीवी देखते हैं, घर में बच्चों के साथ खेलते हैं, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ लोग आते ही इतना देर से हैं कि बच्चों से भी नहीं मिल सकते, और इतना थके हुए होंगे टीवी के पास थोड़ी देर बैठेंगे वहीं पर उनको नींद आ जाएगी, और फिर कल सुबह जितनी देर से उठते हैं और फिर वही दिन इसी तरह से गधों की तरह कार्य करते करते खत्म हो जाता है। वास्तव में भक्तों, अगर कम शब्दों में सही बात बताई जाए ना, तो वो ये है कि मनुष्य जन्म जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है तो भौतिक वस्तुओं में उसे समाप्त नहीं करना चाहिए, इसलिए जो हमारे पास है उस पे संतुष्ट रहना चाहिए। जब वामन देव महाराजा बलि से तीन पग पृथ्वी मांग रहे थे ना, जब वामन देव ने कहा मुझे तीन पग पृथ्वी चाहिए, तब महाराजा बलि ने कहा बहुत हंसे जोर से और कहा तुम देखने में छोटे से बालक लगते हो, जितने तुम छोटे देखने में लगते हो ना तुम्हारी बुद्धि भी इतनी छोटी है, तुम उसे कितनी ज्यादा वस्तुएं मांग सकते थे, तुम उसे पूरा लोक मांग सकते हो, तुम उसे कितना सारा धन मांग सकते हो, मैं राजा हूं खड़ा हूं तुम्हें देने के लिए और तुम केवल तीन पग पृथ्वी मांग रहे हो। उस समय वामन देव ने इतना सुंदर सिद्धांत दिया, बहुत ही सुंदर। वामन देव ने महाराजा बलि से कहा माय डियर किंग महाराजा बलि, जो व्यक्ति उस वस्तु से संतुष्ट नहीं होता जो अभी उसके पास है, फिर यदि उसे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट रहना सीखना चाहिए भक्तों, जो हमारे पास है अभी उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल बंद कर देनी चाहिए, कार्य करना चाहिए, फिर हमारे भाग्य में जो होगा वो कम स्ट्रगल से भी हमें मिल जाएगा और फिर समय को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हमें भक्ति के लिए भी पूरा समय मिले। कोई पूछ सकता है कि अभी हमारी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हम ये कैसे समझें कि अब यहां तक हमें संतुष्ट रहना चाहिए, बस और की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है जो अभी आपके पास है ना, फिलहाल आप उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि आप ये सोचोगे कि ये मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, तो तब तक वो मिलेगा तब तक इच्छा और बढ़ जाएगी, फिर सोचोगे ना ये मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। संतुष्टि का मतलब है आप अभी प्रेजेंट में जिस अवस्था में हो भगवान से कहो थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, फॉर द प्रेजेंट मोमेंट उसमें मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि ये समय आपने मेरे लिए प्लान किया है, तो आप मुझे इस समय में संतुष्ट रहने के लिए प्रेरणा दो ताकि मैं संतुष्ट रहकर आपका भजन कर सकूं। यही वास्तव में मानव जीवन का वास्तविक लाभ है, क्योंकि यदि हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तभी हम कभी भी भगवान के पवित्र नाम का जप भी नहीं कर सकेंगे, भजन भी नहीं कर सकेंगे और इवन भक्ति में भी जितना हमारे पास, कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि भई हम वृंदावन में चले जाएंगे, बहुत सारे साधु संघ होंगे हमारे साथ, फिर हम अच्छी भक्ति करेंगे, अभी हम लोग ना नहीं कर सकते हैं, ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं, ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मंदिर नहीं है, जब ये सब होगा तभी मैं भक्ति अच्छी करूंगा। ये सब केवल अपने आप को धोखा देने की बात है। भक्ति आप किसी भी सरकमस्टेंसेस में कर सकते हो, उसके लिए सरकमस्टेंसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप राक्षस के घर पे बैठ के भक्ति की, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि मैं अभी राक्षस के घर में रहता हूं किसी तरह से मुझे इस राक्षस भाव से जान छूट जाए उसके बाद मैं अच्छी भक्ति करूंगा? नहीं, आप जिस कंडीशन में हो उसी में संतुष्ट रहोगे तो उसी में आप भक्ति करोगे। तो भक्ति के लिए भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा साधु संग मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा सरकमस्टेंसेस मिलेंगे, घर में कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होगा, बच्चे बच्चे कुछ नहीं होंगे, तंग कोई नहीं करेगा, मैं रूम बंद करूंगी अंदर बैठ के माला करूंगी, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आज जो सिचुएशन है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में अच्छे से अच्छा नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैसा साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।